بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ ہم سورہ حج کی 25 آیات کر چکے تھے اور 70واں آرا چل رہا ہے. انشاءاللہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج کا زیادہ تر مضمون حج کا ہے, جیسے کہ اس کا ٹائٹل ہے, سورت کا عنوان ہے, زیادہ تر جو ہے حج کے بارے میں بات آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر کا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر کا مقام طے کر دیا. اب یہ گھر کون سا ہے؟ یہ بیت اللہ جس کو بولتے کعبہ شریف. تو یہاں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ کعبہ شریف کا مقام اللہ تعالیٰ نے طے کیا, ابراہیم علیہ السلام نے طے نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کعبے کی عمارت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کا مقام طے کیا تھا. اور یہ سب میں پرانی عبادت گاہ ہے. یہ بیت العتیق بھی جو ہے بعد میں بات آ رہی ہے, یہ سب میں پہلے جو ہے پہلی پرانی عبادت گاہ ہے. یہ کس لیے طے کیا تھا؟ یہ کہ اللہ تشرک بھی شیئم و تحر بیتیا لِلطَّائِفِينَ وَالْخَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ, تاکہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو. تو اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو روایتوں میں بات آئی ہے کہ کعبے میں 360 بت تھے, تو فتح مکہ کے وقت وہ بتوں کو جو ہے نکال دیا گیا وہاں سے, تو 360 بت تھے. یہاں حکم یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو, کہ میری ذات و صفات میں کسی اور کو شریک مت کرو. تو ایک کعبے کو بناؤ, کعبے کی عمارت بناؤ تاکہ صرف میری ہی عبادت ہو. اب یہ بیتی جو بات آ رہی ہے, میرا گھر, یہ لفظ کو سمجھنے کی بڑی خاص ضرورت ہے. اب بیت کا مطلب عام طور پہ تو گھر کا آتا, اہل بیت, گھر والے. سورہ نساء کی 108 آیت میں یبیتون لفظ آیا ہے بیت سے, بے یہ تیم اس کا مادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت راز کی باتیں کرنا, اس کو سمجھیے, بہت خاص بات ہے. تو بیت اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا مقام جہاں بندہ اللہ سے راز کی باتیں کرتا ہے, یہ بھی بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. آپ نہیں چاہتے آپ کی دعا کوئی اور باز سنے, نہ بیوی سنے, نہ بچے سنے, نہ والدین سنے, نہیں, آپ اپنے اللہ اور آپ کے بیچ میں رازداری ہے. تو بیتی ہے نا, یہ میرا, یہ مقام, میرے مقام کو پاک کرو. ایسا مقام ہے جب بندہ مجھ سے رازداری کی باتیں کرتا ہے. اب ایک بات دیکھیے, سمجھیے ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں. کوئی کبھی ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تو دل ہی دل میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں. کافر کیا کرتے ہوں گے؟ کس کو یاد کرتے ہوں گے؟ کس کی مدد مانگتے ہوں گے؟ تو یہ خوش قسمتی کو نہیں بھولنا ہے. تو الفاظ کے معنی سمجھنے میں یہ جو کئی معنی اس میں نکلتے, ایک تو گھر کے معنی نکلتے ہیں. اب گھر کے معنوں میں کیا ہوا, جو مس لیڈ کرنے والے ہیں بولے بھی ہیں, وہ تو اللہ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ وہاں رہتے, مطلب یہ کہ باہر نہیں رہتے تھے. یہ اللہ کا گھر بولے تو اللہ, میرا گھر بولے تو میرے گھر میں رہتا ہوں. مگر یبیتون کا جو لفظ جو ہے سورہ نساء کی 108 آیت میں استعمال کیا گیا, وہاں بیت کو سمجھایا گیا کہ ایسا مقام جہاں بندے اللہ سے, اپنے مالک سے جو ہے راز کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے گھر کو, بیت اللہ کو جو ہے طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک کر, مطلب یہ ہے کہ اس میں میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. یہ حکم تھا, یہ حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد, یہ تمام جو ہے نکال دیے گئے, اللہ کے فضل سے اب تک محفوظ ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور انسانوں میں حج کا اعلان کرو. دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ابھی ہمارے پاس سے بعض لوگ حج کو جا کے آئے ہیں, تو بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بولنا تھا کہ میں اگر یہاں اعلان کروں تو کس کو سنے آئے گا. تو عالم ارواح میں جو روحیں بولتے, مجھے کوئی اور لفظ سبسٹیٹیوٹ نہیں مل رہا, वहां जिसने एक वक्त लब्बैक कहा उसका एक हज हुआ, जो एक से ज्यादा लब्बैक कहा उसके उससे ज्यादा हज हुए। लब्बैक यानी हाजिर हुआ। हाजिर कब होते हैं आप? जब किसी का बुलावा आता, भाई कोई बेल मारे बाहर, आप बोले कि अभी आया, तो कोई बेल मारने पे आप जाते हैं, खाली नहीं चले जाते। तो बुलावा आता है तो हज को जाते हैं, बुलावा नहीं आया तो नहीं जाते। मुझे विचारों का एक का केस मालूम है, कितने साल रहे जिद्दा में, हज नहीं कर सके, नहीं कर सके। उनके जहन पे था कि मेरे कुछ खर्चे हैं और ये खर्चे जब तक अदा ना हो, और वहां को इतना खर्चा भी नहीं होता था उन्हें, तो मुझे वही एक ख्याल आता था कि भाई देखिए ये सही बात है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब ये है कि आपने बुलाया हम हाजिर हो गए। तो अब यहां ये बात आ रही है कि आप इंसानों में, अन्नास, इंसानों में हज का ऐलान कीजिए। यातू का रिजालों व अला कुल्ली, अब यहां ये बात समझिए कि ये हज के जो अहकाम है, ये उसके बाद में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हज के जो अहकाम है वो सूरह बकरा की 196 से 203 और सूरह आल इमरान की 96-97, सूरह मायदा की एक और दो, ये आयतों में भी जिक्र आया है हज का, यहाँ भी हज का जिक्र है। अच्छा, फिर उसके बाद में इन आयात में हम, मैं समझता हूँ, पढ़ चुके हैं कि हज अल्लाह के लिए करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नहीं आ रहा है, इससे पहले बात आई है, हज अल्लाह के लिए कर, लिल्लाही अल्लाह के लिए करना है। देखिए सूरह ताहा की 14वीं आयत में बात आई है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बोले नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, नमाज का मकसद है मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। सूरह बकरा की 183 आयत में बोले कि रोजे रखो ताकि तकवा अख्तियार करो, परहेजगारी अल्लाह से डर के जो है गुनाहों से बचने के लिए। सूरह हशर की 7वीं आयत में बोले कि देखो ये दौलत तुम्ही लोगों में घूमते ना रहे, ये दौलत जो है तुम गरीबों में जो है तकसीम करो। तो मालूम हुआ कि ज़कात का मकसद यह है कि अमीर से पैसा लिया जाए और गरीब को दिया जाए। तो हर हरकत का अल्लाह ताला हर हरकत की वजह बता दिए। हज के लिए कहा कि लिल्लाह, वजह नहीं बताए, मेरे लिए हज करो, बस फिनिश। तो लिहाजा जैसा बात आती है, मकबूल हज की बात आती है कि इस्लाम कबूल करने के बाद, हिजरत करने के बाद और हज करने के बाद बंदा ऐसा हो जाता है जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ, जितने भी गुनाह थे जो है माफ हो जाते हैं हज कबूल करने के। तो इसे अल्लाह के लिए जो है हज करो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यातू का रिजालों व अला कुल्ली जामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीख। अभी आयत को बहुत जरूरी है एक एक लफ्ज समझना। आपके पास आएंगे पैदल, अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया, अब कई लोग हज को अब भी जा रहे हैं, आपके पास आने का क्या मतलब हुआ? तो बात रिवायतों में यह आया है कि आलम अरवा में जिसने आपकी आवाज पे लब्बैक कहा, यह अंडरस्टूड है कि आपकी आवाज पे जिसने लब्बैक को कहा हाजिर, वो पैदल भी आएंगे। तो लिहाजा अब भी कई लोग पैदल सब हज करते हैं। और कुल्ली जामिर, अब यहां जामिर का तर्जुमा यह किया गया है हर दुबली सवारी पे आएंगे, और उसका इंटरप्रिटेशन ये दिया गया कि भाई ये ऊंट घोड़े वगैरह जो आते हैं सफर की वजह से दुबले हो जाते हैं। थोड़ा इस पर गौर कीजिए, ये रुआत नीम रे का मादा है, इसी से लफ्ज जमीर है, जमीर प्रोनाउन को बोलते हैं। मैं दोनों उर्दू और इंग्लिश में समझा देता हूं। अहमद परचेज्ड ए हाउस, ही गॉट इट पेंटेड येलो, ही जो है जमीर है, ही में अहमद छुपे हुए हैं, जमीर में असल चीज छुपी हुई है अंदर। अहमद ने एक घर खरीदा, उसने उसको पीला रंग करवाया, उसने, किसने? अहमद ने। तो उसके अंदर अहमद छुपा हुआ है, तो जमीर के अंदर कोई चीज छुपी हुई रहती, मेरे में आप में जमीर है, क्या है कि मैं मेरा जमीर गवारा नहीं करता मैं। अब कोई बोले बताओ सब जमीर कहाँ है आपका, तो कहां से बताएंगे? तो ये छुपी हुई चीज है। अब देखिए मुझे रोंगटे खड़े रहते, अब हवाई जहाज में जो हज को जाते हैं सवारियां पूरे छुपी हुई रहती, समंदर के जहाज में जो हज को जाते पूरे सवारियां छुपी हुई रहती। ये ऐसा वर्ड चुने हैं अल्लाह ताला के ताकियामत इसको कोई क्रिटिसाइज ना कर सके कि ये हज को कैसा आएंगे। ये दुबली सवारियों पे आएंगे जो सफर की वजह से दुबली हो जाएंगे, जब भी वैलिड था अब भी वैलिड है कि ऐसी सवारियों पे आएंगे, और फिर हवाई जहाज चील के उतना दुबला दिखता, जहाज दूर से इतनी सी कश्ती दिखता, दूर से जो दिखता, तो ऐसी सवारियों में आएंगे जिसमें जो पैसेंजर्स हैं वो छुपे हुए रहेंगे, अंदर दिखेंगे नहीं, उसमें आएंगे। और फिर कहां कैसा आएंगे, यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, वो आएंगे फज चौड़ाई को बोलते, अमीक गहराई को बोलते। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में चौड़ाई क्या है, ये लैटिट्यूड्स हैं भाई, हम एक लैटिट्यूड पे हैं, नॉर्थ पोल एक लैटिट्यूड पे है, ये लैटिट्यूड जो है वो चौड़ाई है, और अमीक गहराई क्या है, लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो मेरे तर्जुमे में मैं वैसी तर्जुमा किया हूं कि दे विल कम फ्रॉम एवरी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ये 1450 बरस पहले इन वेसल्स विच विल हाइड देम, छुपे रहेंगे हाजिर उसके अंदर, ये प्रिडिक्शन है। तो आज ये हो रहा है, हर जगह दुनिया के हर कोने से जो है हाजी चले आ रहे, किस लिए आएंगे, लयशदु मनाफिउ लहुम, ताकि वो उनके जो फायदे हों उस पर गवाह रहें, उस पर हाजिर रहें, उसको देख लें। मनासी के हज के जो हैं, जो भी मनासिक हैं हज के, उसको उनका हर 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 हरकत का जो है फायदा है, वो फायदा देख लें, उस पर खुद गवाह रहें। वह यस्कुरु स्मल्लाही फी अय्याम, यानी ताकि घास खाने वाले जानवर जिनको हमने तुम्हारे वो जाने पहचाने दिनों में उसको जुबा करें और उनका खाना खाएं और उस पर अल्लाह ताला का नाम ले, लिहाजा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बल्कि हम जुबा करते हैं। यानी यहाँ कुर्बानी का एक रुकन जो है, आग कुर्बानी भी करना है, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनकी कुर्बानी करना है, ये वो जो मालूम दिन है हज, हज के जो दो तीन दिन जो है रहते हैं उसके अंदर जो है कुर्बानी करना है, इसलिए आएंगे। तो कुलू मिन्हा, तो फिर वो उसमें से खाओ, वो अतिमुल बाइस फकीर, और फिर जो तकलीफ में है फकीर है उसको भी खिलाओ। फकीर के माने सूरह बकरा में 273 आयत में जो है बात समझाई गई, फकीर कौन होता है, ये भिखारी बोलते आप, हम जो हमारे पास जो अतराफ रहते, फकीर वो रहता जो अल्लाह के काम में इतना लगा हुआ है कि उसको कमाने की फुर्सत नहीं मिलती और लोगों के पीछे मांगते नहीं फिरता, लोग समझ जाते कि इसको पैसों की जरूरत है और वो अपने से उसको पैसे देते, ये फकीर है कुरान की इस्तेला में, फकीर है। मिस्कीन कौन है, जो मेहनत करता लेकिन मेहनत की कमाई बस नहीं होती तो लिहाजा लोगों को उसको कुछ हेल्प करना पड़ता। तो भले ऐसे लोग जो तकलीफ में हैं, भीख नहीं मांग नहीं सकते लोगों से, उनको भी खुद भी गोश्त खाओ, उनको भी खिलाओ। सुमल खजू खजू तफसहुम, और फिर अब इसके दो तर्जुमे किए गए हैं, एक ये है कि फिर पानी नहा के अपनी गंदगी दूर करो, एक तर्जुमा यह किया गया है कि हज के जो बाकी अरकान हैं वो पूरे कर लिया करो। वल यूफू नुजूरहुम, और अपनी जो नजरें थी उनको पूरा करो। भाई कोई हज हो चुका था फर्ज का, कोई नियत करे थे कि भाई ऐसा हो गया तो मैं और एक एक हज करूंगा, जायज़ चीज़ों की नियत करना जो है जायज़ है, जो भी ऐसी नियत है वो नियतों को पूरा करो। वल यतवफू बिल बैतिल अतीक, और ये जो घर है पुराना उसका तवाफ करो। अतीक किसको बोलते हैं, पुराना खदीम, पहला घर जो बनाया गया था उसका तवाफ करो। अब यहाँ मुनकिर हदीस जो हैं उनसे एक खिताब है कि भाई तवाफ करो बोल के आ गया, कितने चक्कर मारो बोल के नहीं आया। अब हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि इसके 7 चक्कर मारना है, सही में 7 चक्कर करना है, उसके बाद में ये नमाज पढ़ना है, पूरा जो प्रोसीजर है हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिमॉन्स्ट्रेट करे। अब अगर आप हदीस का ही इनकार कर दिए तो फिर कुरान पे इम्प्लीमेंट कैसा करेंगे। अभी आप नमाज पढ़े, किसकी बताई हुई नमाज पढ़े, आप सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप रोजे रखे, किसके अहकाम के मुताबिक आप रोजे रखे, या जकात दिए, कितनी दिए, किसको दिए, किसके अहकाम के मुताबिक दिए, तो फिर हदीस का इनकार कैसा करेंगे, अमल ही नहीं कर सकेंगे हदीस का इनकार करेंगे तो। देखिए हिस्ट्री में भी एक छोटा सा पॉइंट गलत हुआ तो पूरी हिस्ट्री को पोंछ के नहीं फेंक देते। कोई कोई साहब बोले भाई कुतुब मीनार अशोक की लाट है, बोले अब वो हिस्ट्री गलत है, पूरी अरबी लिखी हुई है उसके ऊपर, पूरी अरबी लिखी हुई है, उसके बाद में लिखे क्या उसके ऊपर, पत्थर में कार्व्ड है वो पूरे। तो अब हिस्ट्री के एक पॉइंट को अगर गलत बोले तो पूरी हिस्ट्री को गलत बोल के फेंक देते हैं। नहीं था साहब यहाँ, ब्रिटिश पीरियड भी नहीं था, हिंदू पीरियड भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बोल के फेंक देते हैं। तो मुनकिर हदीस जो है, जिनका जहन ऐसा बना हुआ है, वो अपने जहन में ये बिठाना है कि देखिए बगैर हदीस के कुरान को इम्प्लीमेंट करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हदीस को मानना पड़ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है कुरान पे अमल करना पड़ता। जालिका, ये ऐसा हुआ, वो मैं युअज़िमु हुरिमातिल्लाही फहुवा खैरुन लहू इंदा रब्बी, और जो भी अल्लाह ताला की मोहतरम ठहराई हुई चीजों की इज्जत करेगा वो अल्लाह ताला के पास उसके लिए भलाई होगी। अब अल्लाह ताला की बाइज्जत ठहराई हुई चीजें कौन सी है, वहां काबा है, सफा मरवा है, मुकाम इब्राहिम है, जमजम है, मनासिक है हज के, जो अल्लाह ताला ने तय किया उसकी हुरमत करना, उसकी इज्जत करना, बेइज्जती नहीं करना। अब वहां जाके बोल रहे हैं अरे चलो हजरत सात चक्कर काहे के, बोले मेरे को दम बहुत है, मैं 14 चक्कर मार सकता हूँ, या नहीं होता भाई 3 चक्कर हाँ बस है, बोले हमसे कहाँ से होता। तो ये बेहुरमती की बात है या अपनी अकल लवाना। देखिए एक अरब न्यूज में किसी का आर्टिकल आया था, कोई बहुत बड़े आलिम, मेरा नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो एक बताए थे कि भाई हज का मौका ऐसा रहता बड़े से बड़ा आलिम भी सर झुका के पैरवी करता पूरे अहकाम की, कोई आर्ग्यू नहीं करता हूं, जैसे अहकाम हैं बस वैसी जो है पूरे हज के जो मनासिक हैं वो पूरे करता है। तो इनकी इज्जत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला तुम्हारे पालने वाले मालिक के पास बेहतर होगा। उहुल्लत लकुमुल अनामु इल्ला मा युतला अलैकुम, और तुम पे तमाम जो है घास खाने वाले जानवर हलाल किए जाते हैं सिवाय उसके जो तुम पर पढ़ के सुनाया गया है, यानी क्या है वो मुर्दार जानवर है, जानवरों का गोश है, अल्लाह से हटके दूसरों के नाम पे जानवर जो कुर्बान किया गया है ये हराम है। उसके अलावा जो है जो जानवर घास खाने वाले जानवर हैं वो हलाल किए गए हैं। फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, और ये बुतों की गंदगी से अपने आप को दूर रखो। इज्तनाब करना किसको बोलते हैं, शराब के लिए भी यही लफ्ज आया है, दूर रहो नजदीक भी मत जाओ। अब लोग बहस करते साहब शराब हराम है बल्कि नहीं आया लफ्ज, बोले अरे हराम छोड़ो उसके करीब भी मत जाओ। ये जो बुतों की देखिए फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, ये बुतों की जो गंदगी है उसके करीब भी मत जाओ, इतनी बुरी चीज है कि उसके करीब भी मत जाओ, उससे दूर रहो। वस्तनिबुल खौल जूर, और झूठी बात से दूर रहो, ये बुतपरस्ती खुद झूठ है, इससे दूर रहो और झूठी बात से दूर रहो। हुनफा लिल्लाह, ये हनीफ कौन होता, हुनफा यानी तमाम गलत चीजों को छोड़ के सही चीजों की तरफ अल्लाह की तरफ आ जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हनीफ कहा गया है कुरान में, यानी तमाम गलत चीजों को छोड़ के अल्लाह की तरफ आ जाओ, यानी उसमें ना अपनी मर्जी चलेगी ना मखलूक की मर्जी चलेगी, कोई चीज अल्लाह के अहकाम के खिलाफ ना हो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अब उसको यहाँ क्या समझाया, गैर मुशरिकी ना भी, ये अल्लाह ताला के तरफ आने का क्या तरीका क्या है कि उसके साथ किसी को शरीक मत करो, उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक मत करो। फिर ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि इस कायनात में एक मखलूक है, एक खालिक है, बाकी सब मखलूक है, देयर इज ओनली वन क्रिएटर, रेस्ट इज क्रिएशन। तो मखलूक से किसी को उठा के खालिक के लेवल पे वोट बिठाना शिर्क है, यानी एलिवेटिंग समथिंग फ्रॉम द क्रिएशन टू द लेवल ऑफ द क्रिएटर इज पॉलीथीज्म। तो बात समझना है, मखलूक अलग है, खालिक एक ही है, खालिक के साथ मखलूक में से जो है किसी को उठा के, ये तो सीमेंट और गच्ची की बात हो रही है, लोग इंसानों को भी बना देते हैं, ऐसा मत करो। वो मैं मुशरिक बिल्लाही फका अन्नमा खर्रा मिनस समाई फतक तफूहु तैरु, तो अगर कोई अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करे जात और सिफात में तो उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई आसमान से गिरे और परिंदे उसको जो है चीर फाड़ के जो है फेंक दे, कोई बुलंदी पे आसमान पे चले जाए वहां से गिरे और ये चील कौवे हॉक्स वगैरह जो होते उसको फाड़ के फेंक दे। और तहवी भी रीहु फी मकान सही, या फिर हवा उसको लेके जाके कोई बहुत दूर मुकाम पे फेंक दे, यानी इतनी तकलीफ दे चीज है, जैसे परिंदे खाने से क्या तकलीफ होगी आपको, या कोई हवा आपको उठा के लेके जाके कोई दूर अगर फेंक दे तो आपको कितनी तकलीफ होगी। اس قسم کی تکلیف جو ہے دی جائے گی. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرو, ذالک یہ ایسا ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سمبلز, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے تو وہ دل کے تقوے سے ہے. اب شاعر کا مطلب سمجھیے, شین عین رے اس کا مادہ ہے, اسی سے لفظ شعور ہے. شعور کا مطلب کیا ہے؟ کانشیس ہونا, یعنی ایسی چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ کا شعور پیدا ہو, ایسی چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ کا شعور پیدا ہو. جیسا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑی, پڑھتے کئی لوگ رو دیتے, ایک دم اللہ تعالیٰ کا شعور پیدا ہو گیا. پھر صفا مروہ ہے, پورا یاد آ رہا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے, یعنی زمزم ہے, یہ تمام جو مکہ موزہ کی موسمہ کی جو ہے. تو یعنی شاعر کس کو بولتے, جس سے اللہ تعالیٰ, شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جس سے شعور پیدا ہو, وہ جو اس کی عزت کرے گا, تو یہ عزت دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہوگی. کہے کہ بات سمجھیے, تقوی دل کی کیفیت ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے ایک جو لفظی معنی ہیں ڈرنے کے ہیں, بچنے کے ہیں, جو لٹرل میننگ ہے وہ بچنے کے ہیں, اور اپلائیڈ میننگ ہے ڈرنے کے. فتخ النار, تو آگ سے بچو. فتخ اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے بچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو تقوی, خلوب یعنی دل کے تقوی کی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ سمبلز جو ہیں ان کی عزت جو لوگ کرتے ہیں, وہ دل میں جو تقوی ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, پرہیزگاری ہے, وہ جذبے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہاں جو ہے لکم فیہا منافع الی اجل مسمی, اور یہ جانوروں میں ایک وقت تک تمہارے لیے فائدہ ہے. قربانی کے جو جانور ہیں, اگر اونٹنیاں ہیں, بکریاں ہیں, گائیں ہیں, تو ان کے سواری بھی کرتے ہیں, دودھ بھی پیتے ہیں, پھر قربانی دے کے جو ہے اس کا اجر بھی کماتے ہیں. پھر ثم محلھا الی البیت العتیق, پھر ان کے حلال کرنے کی جگہ جو ہے بیت العتیق, یعنی پرانا گھر, یعنی کعبہ شریف کے پاس ان کے حلال کرنے کی جگہ ہے. یہ پورا فکس ہو گیا, کہیں اور حلال کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے جو ہے بکرا ذبح کر کے بولوں گا کہ میرے حج کا بکرا ہے, بولے تو نہیں ہوتا ہے. یہ حج کے ارکان میں ہے قربانی, یہ وہیں ہوگا, قریب ہوگا, یہ بالکل کلیئر ہے. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور ہم نے ہر قوم کے لیے یعنی طریقے قربانی کے طریقے بتا دیے ہیں کہ جب وہ گھاس کھانے والے جانوروں کو حلال کریں تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ لیا جائے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, یعنی ان لوگوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جانوروں کو حلال کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے, کسی اور کا نام نہیں لیا جائے. اب نعوذ باللہ ہمارے پاس بعض قربانیاں اللہ سے ہٹ کے دوسروں کے نام پہ ہو جاتی ہیں. فلانی جگہ لے کے گئے بکرے کی قربانی دے دی, کیا بولے تو ایک صاحب بولے نہیں بھائی میں وہ نئی ایمبیسیڈر خریدا تھا تو فلانی جگہ جا کے وہاں بکرا کاٹ دیا. بولے تو گھر میں کاٹو, بہت غریبوں کو کھلاؤ, خود کھاؤ, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہاں بات سمجھنا ہے, یہ تمام شرک کی چیزیں ہیں. اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے نام پہ جو ہے قربانی نہیں ہوتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بسم اللہ ہی اللہ اکبر. اور پھر تو الہکم الہ واحد فلہ اسلموا, اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے تو بس اسی کے سامنے جھکو. اب الہ اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ بہت زمانہ ہو گیا ہے اس بات کو سمجھا کے. دیکھیے اللہ اس میں ذات ہے, الہ ڈیزگنیشن ہے, سپریم اتھارٹی آف دی یونیورس. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ ساری کائنات کا اور کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے, ڈیزگنیشن ہے الہ. اللہ کے ساتھ ہمیشہ لفظ احد آیا, خلو اللہ احد عام طور پہ, اور الہ کے ساتھ لفظ واحد آیا, احد نہیں آیا, واحد آیا. واحد کیوں آیا؟ واحد جو ہے ایک گروپ آف تھنگس کو, یعنی امت واحدہ, امت میں کئی لوگ رہتے مگر واحد امت رہتی. اے یونٹ کنسسٹنگ آف مینی تھنگس, مائم واحد, اس میں ملینز آف مالیکیولز آف ایچ ٹو او ہیں. مائم واحد بول رہے ہیں, ملینز آف مالیکیولز آف ایچ ٹو او ہیں. یہ ہے قرآن. تو الہکم الہم واحد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ میں یہ جو اسماء الحسنی ہیں وہ الہ کے ڈیزگنیشن کے لیے وہ پورے استعمال ہوتے ہیں. کسی پہ جبار ہے, کسی پہ رحمان ہے, کسی پہ غفور ہے, کسی پہ کریم ہے, ایٹ ون ٹائم. کہیں زلزلہ آ رہا ہے, کہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے, کہیں کوئی دفن ہو رہا ہے, کہیں کوئی ختم ہو گیا ہے, یہ تمام کاروبار چل رہا ہے. تو تمہارا الہ جو سپریم ہیڈ ہے یونیورس کا, جس کا نام اللہ ہے, وہ جو ہے ایک ہی ہے. الہکم الہم واحد فلہ اسلم. تو اسی لیے آرگیومنٹ ہے, تو اسی لیے بھی اس کے سامنے سبمٹ کرو, سرینڈر کرو, جھک جاؤ اس کے سامنے. جب ایک ہی الہ ہے, اللہ الہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, تو دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو, کیوں سبمٹ کرتے ہو, کیوں سرینڈر کرتے ہو؟ صرف اللہ کے سامنے سرینڈر کرو. وبشر المخبتین, اور مخبتین جو ہیں ان کو بشارت سنا دو. یہ مخبتین کون ہیں؟ یہ جھک جانے والے, عاجزی کرنے والے, ہمبل. اب ہمارے پاس اردو میں خبتی بولتے آ رہے, خبتی ہے بھی اس کا دماغ جگہ پہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض الفاظ, عربی الفاظ مس یوز ہو گئے ہیں. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں, بولتے غضب کا کھانا تھا میاں, وہ گائے کا ولیمے کا کھانا بڑا غضب کا تھا. عربی میں غضب کا مطلب غصے کا تھا, غصے کا ہے. کیا غصے کا کھانا کھلایا انہوں؟ آ کے سب کو مار پیٹ کے کھانا کھلا کے بڑھا دیا. تو بعض وقت یہ ہوا ہے کہ کئی الفاظ, میں تو لسٹ بنایا ہوں, کئی الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں میننگ الگ آ جاتے ہیں, یہاں میننگ الگ آ جاتے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ مخبتین کا مطلب عاجزی کرنے والے, جھکنے والے, ہمبل. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک میں جو پڑھا ہوں, صحابہ کا جو مزاج تھا, یا ایھا الذین آمنوا بولتے ہی فوراً چمک جاتے تھے کہ بھئی ہمارے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اب یہ مخبتین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں. تو اب آپ چیک کیجئے یہ کیفیت ہم لوگوں میں ہے کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہوئے بولتے, ارے چھوڑ یارو, اللہ غفور و رحیم ہے, کائے کا دل ڈرتا ہمارا. پھر جنت کی امید بھی ہے, شفاعت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی یہ تمام ٹاپکس پہ بالکل نل نل ہے. نل سے بھی کم اگر کوئی چیز ہو سکتی تو نیگیٹو علم ہے. تو یہاں بول رہے ہیں کہ یہ مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے, جب تذکرہ آتا ہے, ان کی نصیحتیں سنائی جاتی ہیں, تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم, اور ان پہ جو مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں. مصیبت کب آتی ہے؟ دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی. برابر فجر کی نیند خراب کر کے جو لوگ ماشاءاللہ مسجد کو جا کے نماز پڑھتے ہیں, فجر میں دوسرے لوگ سوتے رہتے ہیں, میجورٹی سوتے رہتی ہے. 6 بلین پاپولیشن میں سے میں سمجھتا ہوں 5.8 بلین پاپولیشن تو فجر میں سوتا ہوں گا. تو تھوڑے سے لوگ جو اٹھتے ہیں, اور سردی میں, گرمی میں نیند خود سیکریفائز کر کے جاتے, صبر کرنا پڑتا. سمر میں دھوپ ہے تیز, 41, 42, 43 چل رہا ہے, وہاں تو مڈل ایسٹ وغیرہ میں 52, 53 بھی چل رہا ہے. ویسی گرمی میں چلے جا رہے ہیں نماز کو, زکات دے رہے ہیں, سیکریفائز کر رہے ہیں, حج کو جا رہے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل جا رہے ہیں, بعض لوگ دین کے کاموں پہ نکل جا رہے ہیں. تو یہ جی تمام چیزوں میں صبر کی ضرورت ہے. جب تک صبر نہیں ہے دین کا کام نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں مخبتین جو ہے وہ مقیم الصلاۃ, اور پھر نماز قائم کرنے والے ہیں. نماز کائے کے لیے قائم کرنے والے ہیں؟ سوشل یونٹی برقرار رکھنا ہے. دیکھیے, اللہ معاف کرے, بات بعض لوگوں کو بڑی کڑک معلوم ہوتی ہے, مسلمان کی فرض نماز تو با جماعتی ہونا چاہیے. کوئی شرعی مجبوری ہے وہ الگ ہی بات ہو جاتی ہے. عمر ہے یا بیماریاں ہیں, کچھ نہیں جا سکتے, وہ بات الگ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں اقیم الصلاۃ کی جو بات آتی ہے, نماز کا نظام قائم کرنا, تو نماز قائم ہوگی تو ہم ایک دوسرے سے ربط قائم رکھیں گے, تعلقات ہمارے رہیں گے. اگر اکیلے اکیلے گھروں میں پڑھ لیں گے تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. بھائی جب جماعت پہ آتے تو ایک دوسرے کے مسائل بھی معلوم ہوتے. بھائی کسی کو ملازمت کی ضرورت ہے, کوئی صاحب کو ملازم کی ضرورت ہے, ذکر آیا, بولے بھی فلانے صاحب ہے, چلیے مسجد میں جو ہے بات طے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا نظام ہے. تو فرض نماز تو جو ہے اور اتباعِ سنت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شاید ہی کوئی نماز آخری زمانے میں جو ہے وہ بات اور ہے, جب بیمار بہت پڑ گئے تھے باجماعت نماز ہوتی تھی. تو وہ مقیم الصلاۃ تھے, وہ مما رزقناہم ينفقون, اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں. یہ اکنامک یونٹی آف دی کمیونٹی ہے زکات. بھئی آپ کو غریب پہ ترس آیا, غریب مسلمان پہ, اس کو آپ زکات کے پیسے دیے, اس کے دل میں آپ کی عزت و محبت پیدا ہو گئی, بولے بھائی میری غربت کا خیال رکھ کے اتنا پیسہ دیا ہے بیچارہ مجھے, تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی, نماز کو آ رہے ہیں, سوشل یونٹی ہو گئی, اکنامک یونٹی ہو گئی, دونوں چیزیں ہو گئی. پھر یہاں جو ہے مما رزقنا ہوں, ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں. اب ایک بات ہے, اصول کی بات, جب آپ نے دیا ہے تو خرچہ بھی آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا چاہیے, کیونکہ پیسہ میرا نہیں ہے. مما رزقنا ہوں, ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ نے دیا ہے تو پھر آپ کے احکامات کے مطابق خرچ ہونا چاہیے, خرچے میں میری مرضی نہیں چلنا چاہیے, جائز اور ناجائز کا خیال ہونا چاہیے. بھائی جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو 5,000 روپے دیا, میں بولا بھائی ذرا چلیے میں جس کو بولا اس کو دے دیجیے, میں بیچارہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, بولا اس کو 1,000 روپے دیجیے. آپ پلٹ کے پوچھ رہے ہیں فقیر کو 1,000 روپے, مجھے کتنا نہیں غصہ آئے گا کہ میرا پیسہ ہے, آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ فقیر کو آپ کا دخل ہی کیا ہے اس میں, آپ کو صرف جو ہے ایجنٹ کی حیثیت سے رکھا ہوں میں کہ میں جو بولوں اس پہ عمل کرو آپ. تو مما رزقنا ہوں ينفقون کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے اس کو اسی طریقے سے خرچو جیسا کہ ہم نے بتایا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے. اور پھر آج کے ارکان کا جو ہے بات آ رہی ہے, والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر, اور یہ جو اونٹ ہے ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے سمبلز قربانی اور کے سمبلز بنائے ہیں اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے, قربانی کے سمبلز ہیں. شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے, اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا سمبل ہے. کیا سمبل ہے اس کو ہم نہیں سمجھے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیے تھے ذبح کرنے کے لیے, اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو سنت ابراہیمی میں ہم کو اپنی اولاد کی قربانی دینا پڑتا تھا. تو یہ بقرعید کوئی صاحب ہمارے آفس میں کوئی پوچھے, بیچارے پیون تھے, وہ کوئی غیر مسلم صاحب پوچھے نہیں آئے بقرعید کیا ہو, تو بکرے کی تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر جانور نہیں آتا اس وقت, دمبا نہیں آتا اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے, تو سنت ابراہیم میں ہم کو اپنی اولاد کی قربانی اس طریقے سے دینا پڑتا تھا ثبوت دینے کے لیے کہ اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اولاد کو ہٹا لیا, جانور کو لا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قربانی کی نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربانی کا سمبل ہے یہ جو ہے نشانی ہے ہماری, اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا سمبل ہے یہ, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں. فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ, اور جب یہ اونٹ جو ہے کھڑے رہیں تو اس پہ اللہ کا نام لو. اب اونٹوں کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں اور وہ جو طریقہ ہوتا مار کے ان کو گرا دیتے ہیں, تو جو ہے جب وہ کھڑے رہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْخَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ, اور پھر جب وہ گر جائیں اپنے بازو پہ جب گر جائیں تو تم بھی کھاؤ, اور پھر ایسے کو بھی کھلاؤ جو خناعت کرتا ہے مانگتا نہیں ہے, اور جو مانگتا ہے دونوں کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ جب وہ گر جائیں. کذالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون, اس طریقے سے ہم نے یہ اونٹوں کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. سوچ کے دیکھیے آپ, اتنا بڑا جانور بیچارہ قربانی کے واسطے منڈی لٹکا کے کھڑا ہوا ہے, کون تابع کیا ہے. تو ایک وقت ہمارے محلے میں سے اونٹ جا رہا تھا تو میں ڈر کے ہٹ گیا, اونٹ سے ایک دم وہ بڑا جانور ہے دیکھے, تو پھر وہی خیال آیا, میں بولا ایسے جانوروں کو ایک اتنا سا کا بچہ رسی پکڑ کے کھینچ کے لے کے چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے اس کے پیچھے, کون مسخر کیا ہے, کون کنٹرول میں دیا ہے. ایک اونٹ دیکھا ایک قربان ہوا گر گیا, दूसरा ऊँट भाग जा सकता ना, तो इसकी कुर्बानी होगी मेरी भी होती, बोल के दाखा तो है देखने के वास्ते, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। तो मुसखर कर दिया अल्लाह ताला ताकि तुम शुक्र अदा करो कि इतना बड़ा जानवर जो है खाने के लिए दे दिया। अगर ये जानवर खाने के लिए नहीं होते तो हम खाना क्या खाते थे? तो ये जानवर, ये तरकारी भाजी फल वगैरह ये सब अल्लाह ताला के दिए हैं ताकि तुम शुक्र अदा करो। और फिर यहाँ भी ये शुक्र अदा करो कि औलाद के बजाय ऊँटों की कुर्बानी होगी, बकरों की गायों की कुर्बानी होगी औलाद के बजाय, इसका भी शुक्र अदा करो। लन यनाल अल्लाहु लहुमहुमा, अल्लाह वला दिमाउहा, अल्लाह ताला को ना इनका खून गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ना अल्लाह ताला को गोश्त पहुंचता है, पहुंचा ही नहीं सकते अल्लाह ताला को गोश्त, और ना जो है खून पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक्वा, तक्वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारा जो दिल का तक्वा है वो अल्लाह ताला तक पहुंचता है। यानी ये जो परहेजगारी की कैफियत है, या अल्लाह आपका हुक्म है कुर्बानी का, मैं साल भर जमा करके रखा हूँ अगर नहीं था तो, या आपके हुक्म के मुताबिक मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, औलाद की कुर्बानी से बचा दिए, ये खुशी का मौका है, आप इसको कबूल कीजिए। अगर मैं कुर्बानी नहीं करूँगा तो डर है कि आप मुझसे चिढ़ ना जाएं, ये खौफ है। मुत्तकी जो होता, मुत्तकी में दो किस्म के खौफ समझ में आते हैं। एक खौफ तो ये रहता कि भाई कहीं अल्लाह ताला बुरा ना माने, एक खौफ ये रहता। जैसा मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि भाई अब हमारे नवासे वगैरह है, मैं जाते वक्त बोल दिया कि आते वक्त कैडबरी लाऊंगा, और वो कैडबरी की दुकान काफ़ी दूर थी, घर पहुंचते पहुंचते जब याद आया, अरे मैं वायदा करा था भूल गया, बोले वापस जाने की हिम्मत नहीं है। अब अंदर से एक डर पैदा हुआ कि बच्चा चिढ़ जाएगा, ये डर मारम पीटी का डर नहीं है, ये मोहब्बत का डर है कहीं बच्चा चिढ़ जाएगा। तो ये मुत्तकी जो होता है इसमें ये खौफ होता कि कहीं अल्लाह ताला चिढ़ जाएंगे हमसे अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे। और फिर दूसरा खौफ ये रहता कि ये गुनाह है, हुक्म पे अमल नहीं करना गुनाह है। हज करने की कैफियत है आपके पास, इस्तेतात है, लेकिन आप हज नहीं कर रहे हैं गुनाह है। पांच वक्त की नमाज फर्ज है, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं गुनाह है। तो जो जो अहकाम आता है, तो ये यानी अंदर से जो तक्वा अल्लाह ताला का जो खौफ होता है वो जो है अल्लाह ताला तक पहुंचता है। तो अब यहां मालूम हुआ कि इबादत में दो चीजें हो गई, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है नियत जिसको बोलते हैं, और एक मटेरियल चीज है मादी चीज जिसको बोलते हैं। अब ये मादी चीज क्या हुई, हम लोग सब खड़े रहे, खियाम में रहे, रुकू में रहे, सजदे करे, लोग देखने वाले बोले बेचारे भाई नमाज पढ़ रहे। अब एब्स्ट्रैक्ट चीज क्या है, नियत की चीज क्या है, नहीं मालूम किसका दिल कितना कि दिलो दिमाग कितना अल्लाह ताला की तरफ लगा हुआ था। कोई हिसाब डाल रहे, कोई वो कर रहे हैं, कोई ये सोच रहे हैं, कोई वही सोच स्वास्थ्य। तो भाई यानी नमाज की जो कैफियत होती है वो अल्लाह ताला के खौफ की कैफियत हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत की कैफियत हो। वो कैफियत ना हो बस खाली जो है एक फिजिकली खड़े हुए हैं और एक साहब हैं कि बिल्कुल जैसा रहना चाहिए वैसी कैफियत है उनकी। तो यानी मतलब और एक जो हदीस में बात आती है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो नीयत पहुंचती है अमल नहीं। तो मैं इसकी कई मिसालें दिया कि भाई एक साहब अजान सुने और बोले भाई अल्लाह ताला का बुलावा आ रहा है, यानी ये अजान पे मैं, मुझे तो बाद ऐसा महसूस होता है कि ये गवाही देना है कि अल्लाह के सिवाय कोई इलाहा नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, भलाई के तरफ आओ, नमाज के तरफ आओ, भलाई के तरफ आओ, ये सबूत देने के लिए आ रहे। डर के आ गया, एक नमाजी वैसा आया, एक जवान बच्चा बैठा हुआ है, अम्मा बोले क्या है मियाँ नमाज, बोले तो मार खाते तुम, बोले तो अम्मा से बाबा से डर के जो है नमाज को आ गया, ये भी एक नमाज को आया। एक साहब निकले कोई बड़े कॉम्प्लेक्स में रहते थे, बोले भाई मैं नमाज को गया तो पूरे लोग मेरे को नमाजी वमाजी समझ के अलर्ट वलर्ट करेंगे, शरीफ आदमी है बोल के, एक लोगों को बताने के वास्ते निकला। एक साहब बोले डायबिटीज है भाई, डॉक्टर साहब बोले रोज वॉक होना, इससे बेहतर वॉक क्या है, नमाज भी हो जा रही वॉक भी हो जा रही। तो नमाज की नियत कम है, डायबिटीज की नियत ज्यादा है उसमें। ये सब कैफियतें अल्लाह ताला को पहुंच रही हैं, हम अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते कोई चीज को। तो कबूल कौन सी हुई, जो खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए जो नियत से काम किया जा रहा है वो पहुंचेगा। कजाली का सख रहा लकुम ली तुकबिर अल्लाह अला मा हदाकुम, इस तरीके से हमने ये कुर्बानी के जानवर तुम्हारे कंट्रोल में दे दिए, मुसख़र कर दिए, ताकि तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बड़ा करो, बयान करो, वो उनकी हिदायत देने पर कि कुर्बानी इस तरीके से करना चाहिए, वो जो हिदायत दिए हैं, हज के पूरे अरकान बताएं, उस पर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें। लिहाजा कुर्बानी के वक्त भी जो छोटी दुआ पढ़ी जाती हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, वो बशरिल मोहसिन। और मोहसिन कौन होते हैं? देखिए, ये मुत्तकीन और मोहसिन का फर्क समझिए। मुत्तकी वो लोग होते हैं जो अल्लाह से डर के कि भाई अल्लाह ताला बुरा ना माने, तमाम अमल पे अमल करते हैं। मोहसिन हुसन से है, हुसन ड्यूटी, और मोहसिन का मतलब परफेक्शनिस्ट, ए ब्यूटी इज परफेक्ट, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता ब्यूटी में। तो मोहसिन ये होते हैं कि भाई अब जैसा ये खाली अगर खंभा बना देते और इस पर प्लास्टर भी नहीं करते और चूना भी नहीं डालते तो कोई फर्क नहीं होता था, फर्ज तो पूरा हो जाता था सपोर्ट देने का, लेकिन इस पर प्लास्टर डाल के उसको लेवल करके उसको जो पेंट करे हैं उसमें हुसन आ गया, एक जैसा भी हुसन आ गया। तो अगर आप फर्ज नमाज पढ़ लेते तो इबादत हो जाती थी आपकी, लेकिन आप पहले चार रकात सुन्नत पढ़े, फिर दो रकात सुन्नत पढ़े, फिर बहुत से लोग जो है दो नफिल पढ़ लिए, तो ये आप एडिशन कर रहे हैं, हुसन पैदा कर रहे हैं अपनी इबादत में। तो ये मोहसिन जो अपनी इबादतों में ज्यादती करते हैं उनको जो है खुशखबरी यानी कहे कि जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए, इन्नल्लाह युदाफी अनल्लज़ीना आमनु, बेशक अल्लाह ताला दफा करता है उन लोगों से जो ईमान लाते हैं, यानी वो लोग जो ईमान लाते हैं उनसे अल्लाह ताला खुद हिफाजत करते हैं दूसरों की। ये रूल नंबर वन आज के दर्स में देखिए, वो लोग जो ईमान लाते हैं उनका दिफा, उनका डिफेंस, एनिमीज को रिपेल करना, ये अल्लाह ताला का काम है जो ईमान लाते हैं। फिर इराक में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, 47 में हैदराबाद में क्या हुआ, आयत तो गलत नहीं हो सकती ना, कुरान पाक हमें आपके सामने एक हर्फ जो है गलत नहीं हो सकता। हम अल्लज़ीना आमनु के डेफिनेशन में ही नहीं आ रहे हैं। मैं इराक का एक इंटरव्यू देखा था, मैं 92 की वॉर जो 91-92 में जब हुई थी, तो एक साहब से वो बीबीसी से कोई बोले कि व्हाट डिफरेंस डू यू फील ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर, बोले तो मच डिफरेंस, नो सिनेमास, नो नाइट क्लब्स। सोच के देखिए आप, जंग से तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क हुआ, बोले तो उन्हें बोला सिनेमा भी नहीं देख सकते, नाइट क्लब को भी नहीं जा सकते। फिर अब क्या बोलेंगे, अल्लज़ीना आमनू ऐसी बात करके, तो हम समझ रहे ज्यादती हो रही, नहीं जुल्म हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला की तरफ से जुल्म हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम अल्लज़ीना आमनू मोमिनीन वगैरह के डेफिनेशन में नहीं आ रहे। ये तो यहाँ उसूल नंबर वन बताया जा रहा है कि हमारा काम है तुमको डिफेंड करने का, इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्लु खवानिन कफूर, और बेहद उसके रीजन दे रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता, हर खियानत करने वाले नाशुक्रे और काफिर को पसंद नहीं करता। ये खवान किसको बोलते हैं, खियानत करने वाला, खियानत कौन करता, अमानत में खियानत करता, जरा समझिए अमानत को। मैं आपके पास 100 रुपये रखा है, मैं बोला एक बाद में ले लूंगा, मैं फिर एक साल के बाद याद आया तो बोले आप कब रखाए थे, चलो अमानत में खियानत होगी, या बोले 100 रखाए थे यार, मेरे को जहां तक ख्याल है 50 रखाए थे, 50 की खियानत हो गई। तो यहां खियानत करने वाले कौन है, अब कुरान को कुरान से इंटरप्रेट कीजिए। सूरह अहज़ाब की 72nd आयत में बात आई है कि हमने अमानत आसमानों और जमीनों पहाड़ों को दी थी, ये डर गए अमानत नहीं लिए, इंसान जालिम था जाहिल था, अपने ऊपर ले लिया अमानत। ये अमानत क्या थी, अपनी मर्जी से अल्लाह ताला की मर्जी पे अमल करना। सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकलता, चांद अपनी मर्जी से नहीं निकलता, आम का बीज अपनी मर्जी से झाड़ नहीं निकालता, सिवाय इंसान के किसी की मर्जी कहीं नहीं चलती, सिर्फ इंसान को मर्जी दी गई है कि तुम अपनी मर्जी से दीन कायम करो, तुमको खलीफा बनाया गया, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए निकाली गई है, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो बुराई से रोकते हो, तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए बुराई से रोके, سورہ آل عمران کی 104 اور 110 آیت ہے, یہ امانت ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والوں کو, ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کو بلانے کے واسطے نمونے بننا پڑتا آپ کو. ہم تو یہ اردو زبان کے بولتے نمونہ ہے حضرت, انہیں ویسے نمونے بنے ہوئے ہیں, ہم دین کے نمونے کہاں بنے ہوئے ہیں. تو یہ خیانت. تو اللہ تعالیٰ ایسی امانت میں اپنی مرضی سے دین امپلیمنٹ نہیں کرنے والے خیانت کرنے والے, دین کا انکار کرنے والے ہیں, کفر کرنے والے, ناشکرے ہیں کہ ایسی زبردست کتاب گھروں میں رکھے ہیں, اس کو نہ پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, یہ پہلی اجازت ہے جو جنگ کی دی جا رہی ہے. تو اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پہ جنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے. یعنی مدینہ منورہ میں آ گئے تھے تو یہ مدینہ منورہ کی صورت ہے, وہاں نازل ہوئی سو. تو پہلی دفعہ جو ہے کیوں اجازت دی جا رہی ہے, دیکھیں بات سمجھیے, تلوار سے دین نہیں پھیلا, بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, کیونکہ ان پہ ناانصافی کی جا رہی ہے. بھائی مکہ معظمہ میں غلاموں کو ریت, بڑے گرم ریت اور آگ سے کھینچا جا رہا کہے کے لیے کہ وہ اللہ احد بول رہے ہیں, کہ اللہ ایک ہے, اس کے لیے جو ہے تکلیف دی جا رہی ہے. یعنی بیٹا کے سامنے ماں باپ کا قتل ہو رہا ہے کہے کے لیے, صرف یہ کہ یہ ایک اللہ میں مان رہے ہیں, وہ بتوں کی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, عزت نہیں کر رہے. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ جو کیونکہ تم پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس لیے زیادتی کی جا رہی ہے, تم کو جو ہے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے. وہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ پورا قادر ہے, لیکن ایک جگہ آیا تاکہ تم کو آزمائیں. دیکھیں آزمانے کے لیے تم کو, ورنہ اللہ تعالیٰ, ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ ہم لوگ سب بیٹھے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہے کن سب کو ہارٹ اٹیک ہو کے ختم ہو جائے تو ہو جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ. تو کافر مکہ معظمہ سے نکل رہے ہیں, مشرکین اور کافر جو ہے مدینے پہ حملہ کرنے کے واسطے, تو رستے میں اللہ تعالیٰ بولے مار ڈالو ان لوگوں کو, آندھی لاؤ, طوفان لاؤ, ختم کرو, ختم ہو جاتا. ہم قادر ہیں تو مدد, لیکن تم لوگوں میں سے شہید ہونا ہے, تم لوگوں میں سے جنتیوں کو چننا ہے, ان لوگوں میں سے دوزخیوں کو چننا ہے. یہ آزمائش ہے, ہم نے زمین اور آسمان بنایا تمہارے لیے آزمائش کے لیے, ہم نے زندگی موت بنائی تمہاری آزمائش کے لیے, ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا, ایگ اور سپرم سے, تاکہ تم کو آزمائے کہ بہترین عمل کون کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں, آزمائش کر رہے ہیں. اللہ, یہ کون لوگ ہیں جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے, بغیر جسٹیفیکیشن کے نکالے گئے. کہ آپ گھر میں اچھے خاصے ہیں, کوئی صاحب آئے بولے چلو گیٹ آؤٹ, آپ بولیں گے جزت میرا گھر ہے, آپ کا یہ ظلم نہیں ہوا ہے. مکے میں ان کی جائیداد تھی, ان کے گھردار تھے, بیوی بچے تھے, پورا کاروبار تھا ان کا, ان کو زبردستی جو ہے ہجرت کرنا پڑا ان کی زیادتی کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ نہیں بولے کہ تلوار لے کے نکلو, جو ملا اڑا دو بول کے نہیں. یہ جو تم کو اپنے گھروں سے نکالے ہیں, الا تمہارا بغیری نے الا ان یقولوا ربنا اللہ, تمہاری غلطی کیا تھی نعوذ باللہ, تم خالی یہ بولتے تھے کہ ہمارا پالنے والا مالک اللہ ہے, دیٹس آل, اس کی وجہ سے تم کو جو ہے گھر سے نکال. اگر ان کے عقید گزر تھے, وہ لو لا دف اللہ ناسی باز ہوں بھی بازی لہدیمت سوامی ہوں وہ بئی ہوں وہ سلوات ہوں وہ مساجد ہوں یسکر فی حسم اللہ کثیرہ, اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں باز کو باز سے روکتا نہیں. دیکھیے کہیں نہ کہیں جنگ چل رہی ہے, کہیں نہ کہیں رائٹس چل رہے ہیں, آپ اخبار اٹھائیے دیکھیے, ٹی وی کی نیوز دیکھیے, کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. تو یہ حق و باطل کی جنگ ہے, ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ, فلسطین میں بھی چل رہی ہے, افغانستان میں بھی چل رہی ہے, عراق میں بھی چل رہی ہے, آئرلینڈ انگلینڈ کی چل رہی ہے, ہر جگہ, کئی جگہ فارسٹ میں ہو رہا ہے. یہ کائے کے واسطے ہو رہا ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ دیکھیے اب ہوتا طریقہ کیا ہے, ایسی چیز ہوتے ہی مساجد بھر جاتے, ذرا رائٹ ہوا یا کوئی گڑبڑ ہوئی, مسجد میں جگہ نہیں ملتی, اتنے لوگ آ جاتے, مساجد مر بھر جاتے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ڈھا دی جاتی مساجد. کیا کیا ڈھا دی جاتی, اگر ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے نہیں بچاتے, دفاع نہیں کرتے, باطل کے خلاف حق کو نہیں اٹھاتے, تو ڈھا دی جاتی, یعنی عبادت گاہیں, گرجے گھر, چرچز, اور یہودیوں کے سائنگاگز और मसाजिद जहाँ अल्लाह का जिक्र कसीर, जिक्र कसीर होता है, बहुत जिक्र होता है, ढा दी जाती है। अब एक दुनियावी चीज सोचिए, मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या बेहतरीन लोकेशन है मस्जिद का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के वास्ते। अब अगर ये फर्ज कीजिए कि गन फाउंड्री वालों की मस्जिद है, ये लोग सोचे कि भाई इसे कौड़ी का आम की आमदनी नहीं है, यहाँ तोड़ के अगर एक मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मॉल वॉल डाल दिए, महल्ले वालों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो क्या अच्छी बात है, दुनिया बन जाएगी। तो ये अगर मार नहीं खाते तो एक नाउजुबिल्ला एक जमाना आता ऐसा होता, और ये बात गलत नहीं है, कुरान से साबित है। कई अमेरिका से आए सो लोग बोले कि हम चर्चेस खरीद के उसको मस्जिद बनाए, चर्चेस पुरानी चर्चेस जिसमें कोई नहीं आ रहा वो खरीद के हम उसको मस्जिद में तब्दील करें। तो अगर हम उनकी कॉपी करते रहे तो खुदा ना खास्ता ऐसा हमारे पे भी बात आ जाएगी। देखिए कई मसाजिद हैं जो गैर आबाद हैं। पंजाब में मैं रह चुका हूं काफी दिन, लेट 1950s में, तो काफी मसाजिद हैं जो हमारे कब्जे से ही निकल गए, और अब कुछ लोग नमाज के लिए नहीं जा रहे तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अब यहां यह बात मालूम हो रही है कि क्योंकि हम तुमको एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं, तकलीफ होती है, डर होता, तो अल्लाह का नाम लेने के लिए अल्लाह के घरों में आ जाते। अगर नहीं आ, ऐसा होता तो फिर अल्लाह ताला को ही भूल जाते। जैसा ये मौसम है, एग्जाम्स के रिजल्ट निकल गए, नमाजें खत्म हो गए बच्चों के, रिजल्ट से पहले वही बात जुमला रिपीट करता हूँ मैं, इम्तिहान के वक्त और रिजल्ट के वक्त ऐसा मालूम होता ये बच्चा अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, अब क्या पाबंदी से पढ़ रहा, भाई 5 वक्त की नमाज मस्जिद को जाके पढ़ता हूँ। रिजल्ट निकल गए, 78% आ गए, 73% आ गए, मजे में एडमिशन हो गया मजे में। अब ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्चा अब नमाज पढ़ते ही नहीं जिंदगी भर। तो यहाँ ये मिसाल दी जा रही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये ढा दी जाते। अब ये देखिए एक बड़ा रूल नंबर 2 आज के दर्स का आ रहा है, वला यंसुरन अल्लाह मैं यंसुरुहू, जो अल्लाह ताला की मदद करेगा उसकी अल्लाह ताला मदद करेगा। बात बड़ी साफ है, उसूल है, जो अल्लाह ताला की मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। क्यों? इन अल्लाह लखवीउन अजीज, अल्लाह ताला कुव्वत वाला है। खबी क्या कलेक्टिव कुव्वत को बोलते, तमाम असबाउल हुस्ना की कुव्वत है अल्लाह ताला। अजीज है, इख्तदार वाले हैं, पुलिस कमिश्नर है, पैसा नहीं होगा लेकिन इख्तदार है, कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ बात आ रही है कि जो देखिए वली यंसुरन अल्लाह, ये कंस्ट्रक्शन अरबिक क्या है, अल्लाह विल डेफिनेटली हेल्प, अल्लाह ताला यकीनन मदद करेगा उसकी जो अल्लाह की मदद करे, यकीनन। अरबी कंस्ट्रक्शन ये है कि यकीनन डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खवी है, अजीज है, ताकतवर है, इख्तदार रखते हैं। अब ये उसकी मदद कैसी होगी, अल्लाह ताला की मदद कैसी होगी, उसको पैसों की जरूरत नहीं है, उसको कपड़ों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की मदद कैसी होगी दीन कायम करने में। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज, अगर हम इनको जमीन में मुकाम दे दें, अगर हम इनको जमीन में एक मुकाम दे दें, हुकूमत दे दें, तो क्या करेंगे, अकामुस सलात, पहले नमाज कायम करेंगे, सोशल यूनिटी डेवलप करेंगे, और बेशक नमाज बेहयाई और गुनाह से बचाती है। सूरह अनकबूत की 29th आयत है, अन्न सलात तन्हा अन अल-फहशाई वल-मुनकर। तो एक सोसाइटी ऐसी बन जाएगी जिसमें बेहयाई भी नहीं रहेगी, और मुनकर यानी मारूफ का ऑपोजिट मुनकर है, यानी कोई गुनाह नहीं रहेगा। ये पहला काम करेंगे कि नमाज कायम करेंगे, वातु ज़कात, और ज़कात देंगे, गुर्बत मिट जाएगी। सूरह हशर में जैसी बात आई कि पैसा अमीरों से दिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, तो मिनिमम जो गुर्बत है, बोले देखिए एक बात आ रही है कि अगर हर मुसलमान ज़कात देने लगे तो कोई मुसलमान दुनिया में भूखा ना रहे, कोई मुसलमान दुनिया में, निज़ाम है ये, वो 2.5% ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो जो है ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, वह अमरू बिल मारूफ और नहू अनल मुनकर, और नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। अल्लाह ताला की मदद कैसा करेंगे? नमाज कायम करेंगे, जकात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। तो अब नेकी का हुक्म देने, बुराई से रोकने के लिए कुरान और हदीस का इल्म होना जरूरी है, नहीं तो खाली निकल गए आप दीन फैलाने के रास्ते। वो मैं मुझे जो क्या आता था, वो कोई फंक्शन में सुना था मैं कि एक मजमा जा रहा था तो सब लोग बोले लेके रहेंगे लेके रहेंगे। साहब साइकिल पे से उतरे, उन्होंने भी पुकारने लगे साथ, लेके रहेंगे लेके। बाजू वाले से पूछे क्या लेके रहेंगे, उन्होंने बोले मेरे को भी नहीं मालूम बोले। तो वैसा हमारा दीन है, निकल गए दीन फैलाने के वास्ते, दीन का कोई एबीसीडी नहीं मालूम। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि थियोरिटिकली आपको कुरान और हदीस में आपको महारत होना पड़ेगा, क्या है कुरान में क्या है हदीस। फिर एक हदीस आई है कि देखो लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको, ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि तुम अल्लाह की मदद मांगो और अल्लाह मदद ना करे, तुम दुआ मांगो दुआएं कबूल ना करो करे अल्लाह ताला, और तुम सवाल करो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला तुम्हारा सवाल पूरा ना करे। तो दुआओं की अगर कबूलियत होना है तो फिर ये तबलीग दीन जरूरी है कि अल्लाह ताला के रास्ते पे लोगों को बुलाओ और गलत रास्ते से लोगों को रोको। उसके लिए अपने आप को मॉडल बनाना जरूरी है और उसके लिए कुरान और हदीस का इल्म जरूरी है, अपनी जो भी जबान में समझ में आती है। वल्लिल्लाही आखिबतुल उमूर, और तमाम मामलों का नतीजा जो है अल्लाह ताला पर है, किसी पे नहीं है, कोई फरिश्ते पे नहीं है, कोई बुजुर्ग पे नहीं है, कोई नबी और पैगंबर पे नहीं है। तमाम मामलों का जो नतीजा होगा वो अल्लाह ताला के हाथ में, तो जिसके हाथ में उसके सामने झुकना है उसके। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मदद करते हैं। वहीं युकज़्ज़िबू का, अगर ये आपको झुठलाते हैं, फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम, तो इससे पहले इन्होंने झुठलाया है कौम नूह को, वह आद की कौम को, और समूद की कौम को ने झुठलाया है, आद की कौम ने झुठलाया, समूद की कौम ने झुठलाया, वह कौम इब्राहिम और कौम लूत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने झुठलाया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने झुठलाया, वह असहाबु मदयन, और मदयन के जो लोग थे यानी शोएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया गया, वह कुज़्ज़िबा मूसा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया गया। فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, तो हमने काफिरों को मोहलत दी, हमारा तरीका ये था कि हमने मोहलत दी नबी भेजने के बाद में, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, फिर उसके बाद में हमने उनको पकड़ा, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, तो फिर हमारी पकड़ कैसी थी, हमारा अजाब कैसा था, हमारी सजा कैसी थी। भाई एक कौम पे सात दिन जो है आंधी आई, एक कौम जलजले में तबाह हो गई, एक कौम को गर्क कर दिया गया, डुबा दिया गया, ये तमाम अजाब आए। इस वक्त ये सब चल रहा है इंडोनेशिया में, वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ, अर्थक्वेक भी आया, तमाम चीजें हो रही है चौथी तरफ दुनिया में। तो हम कौन से खास लोग हैं जो हम पे नहीं आएगा जब तक कि हम अपने आप को करेक्ट ना करें। फकायम मिन खरियतिन अहलकनाहा फहिया जालिमतुन फहिया खावियतुन अला उरूशिहा, तो कितने ही ऐसे गांव हैं जिसको हमने हलाक किया जबकि वो जुल्म जालिम थी, नाइंसाफ थी, अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ काम करती थी, तो वो अपने छतों पे गिरे होंगे, वो अपने छतों पे गिरे हुए हैं। देखिए आप खंडर देखिए जाके, कई खंडर दिखते हैं आप तो खुद घूम जाइए, चले जाइए गोलकुंडे किले को चले जाइए, बगैर बड़े बड़े बादशाह हैं लेटे हुए अंदर, जाके देख लीजिए क्या हाल है पुराने किंग कोठी का, क्या हाल है। शाम के वक्त साइकिल की घंटी नहीं बजा सकते थे हमारे बचपने में, पतंग पिलाए बाजू के घर से तो वहां से आदमी आ जाता था, उतारो पतंग किंकोटी के ऊपर पतंग जाएगी, क्या है वहां सब खत्म हो गया। तो बात समझने की है, तो यानी कितनी ऐसे बस्तियां थी जिसको हमने उनके जुल्म की वजह से, जुल्म क्या था, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ काम करना, अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं थे तो उनके छतों पर गिर गए। वह बीरिन मुअत्तलतिन, और ऐसी बौलियां छोड़ गए, छूटी हुई बौलियां आपको दिखेंगे, यहाँ फाइन आर्ट्स कॉलेज में एक बौली थी, वो कोई कोतवाल साहब का वो था कि ड्योढ़ी थी, वो लोग आके तीरते थे, निजाम कॉलेज नहीं है पीछे किंकोठी रोड के उतर आर्ट्स कॉलेज में वहाँ थी, ये निजाम कॉलेज में एक बौली थी, एक बड़ी बौली थी, कोई पूछ के नहीं देखता था उसको। ये पूरे डिस्क्रिप्शन है, ये सालारजंग का पैलेस था, तो ये सब जो थे ये सब छोड़ के चले गए। उसके बाद में बोले वह खसरिम मशीद, और प्लास्टर्ड महल, फलकनुमा देखिए, गोलकुंडा फोर्ट देखिए, वो दरबार देखिए, रेड फोर्ट का, सब छोड़ के चले गए, कहाँ है वो सब, वो जिंदगी में सब। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो ये तमाम छूट गए है, जिन चीजों के लिए ये करे हैं, बौलियां वैसी छोड़ के चले गए, महिलात वैसी लेके चले गए, ये क्यों हुआ? इसलिए कि जो है ये अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ काम करते थे। आफलम यसीरू फिल अर्ज़ फतकूना लहुमुल कुलूबु याखिलूना बिहा, तो क्या ये जमीन में चलते फिरते नहीं कि इनके दिलो दिमाग होते जिससे ये समझ सकते? और आजानू यस्मऊना बिहा, या कान होते जिससे खबरें सुनते? भाई महबूब अली पाशा के किस्से सुन रहे हैं, अब देख तो नहीं सकते हम, सुन रहे, कान नहीं थे, सुने ऐसा ऐसा हुआ करता था। तो इन्ना ला तामल अफसार, तो हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल खुलूबुल लतीफी सुदूर, बल्कि हकीकत यह है कि वो दिल जो सीने में होते हैं वो अंधे होते हैं। अब खल्क के माने समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है। यहां बात आ रही है लहुम खुलूबू याखिलूना बिहा, खल्क के साथ अखल की बात आई है। एक जगह आया लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके दिल हैं जिससे ये समझ नहीं सकते। इस वक्त साइंटिफिकली बात एस्टैब्लिश्ड है कि हम दिल से नहीं समझते, हम दिमाग से समझते। तो खल्क के माने दिमाग के आगे, एक डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस कर रहा था ये बात, तो ये बात यह है दिलो दिमाग का बड़ा खास रब्त है भाई। जब तक, अब जैसा मुझे भी बाज़ वक्त होता है, उठते वक्त चक्कर आ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट वीक हो गया है, पूरा ब्लड पंप नहीं होता, तो ब्रेन को ब्लड नहीं जाता तो चक्कर आ जाता है। तो ब्रेन की एक्टिविटी पूरे हार्ट की एक्टिविटी पे है। अब कोई एक खबर सुने आप, खबर दिमाग को गई, दिमाग पे इतना जबरदस्त असर पड़ा कि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर सका, फेल हो गया, खत्म हो गया। तो दिलो दिमाग का ये रब्त है, जरा थोड़ी सी बात समझिए, थोड़ा टाइम मुमकिन है लग जाए। ऐसा है, हमारे पास तीन चीजें हैं, एक जिस्म है, एक अकल है, एक दिल है। जिस्म से अमल है, अकल से मेंटल एक्टिविटी है, और दिल से जज्बा है, यानी बॉडी माइंड एंड इमोशंस। इसके लिए कुरान में तीन अल्फाज समझ में आते हैं, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमईना। नफ्से अम्मारा क्या है? जिस्म की ख्वाहिश पे चल रहा है, यूसुफ अलैहि सलाम के मुंह से बोलने लगा है कि बेशक जिस्म, नफ्स जो है ये अम्मारा हुक्म देता है गलत चीजों की। एक बच्चा है, उसमें रीजनिंग नहीं है, नमाज क्यों पढ़ना क्यों नहीं पढ़ना रीजनिंग नहीं है। अब अम्मा और बाबा बोले जाओ मियां आजा और ये नमाज पढ़ो, छोटा बच्चा है आके खड़े रह गया नमाज। अब एक हमारी उम्र के लोग हैं, ये नफ्से लवामा है, कॉन्शियंस है इनमें, आर्ग्यू करते पढ़ना चाहिए भाई, आखिरत है, मरे तो जो है सवाल होएगा, रीजन आउट करके जो है नमाज पढ़ते हैं नफ्से लव। नफ्से मुतमईना है, वहां लॉजिक भी खत्म हो जाती है, बोलते आपका हुक्म है बस अमल कर रहे, खत्म। हम कितने, हमारी अकल कितनी। एक सेटिस्फाइड, तो मालूम हो रहा है कि जिस्म है, दिमाग है और दिल है। तो अल्टीमेट जो कंडीशन है वो नफ्से मुतमईना का कंडीशन है कि आप अल्लाह से राजी, अल्लाह आपसे राजी, और ये कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे नफ्से मुतमईना जो है उसका रिजल्ट क्या है? जन्नत है। अब नफ्से नवा लवामा का नहीं मालूम, अभी आर्ग्यूमेंट में इधर है या उधर है नहीं मालूम। अब नफ्से अम्मारा जो है वो तो जिस्म का गुलाम है, एनिमल के वैसा है, जो दिल बोलता है जो जिस्म चाहता है वो करते रहता है। तो यहाँ जो है बात समझना है कि देखिए, एक बात है कि एक जमाने तक, हम आज भी आप बोलते कि भाई आप आए नहीं वहां, तो हो भी दिल नहीं बोला आने को, नहीं दिल बोलते ही। मगर हर आदमी इस बात आपकी समझ रही कि आपकी तबीयत नहीं चाहिए वहां आने के लिए, तो ये एक बोलचाल में बात आ गई है, तो इसको ज्यादा वो नहीं करना है, लेकिन यह समझना है। और खल्क का जो है, खल्क इनकलाब इसी से है, खल्क दिल को इसलिए बोले कि वो हमेशा हिलते रहता है, इनकलाब रहता। अब वो जमाने नहीं मालूम था कि दिमाग में भी इनकलाब रहता हमेशा, It is not the heart that fails, it is the brain that fails. Brain जब तक fail नहीं हुआ, death वाकई नहीं होती. तो अब आहिस्ता आहिस्ता knowledge बढ़ रही, तो बात जो है समझ में आ रही है. तो यहाँ अल्लाह ताला बात समझा है कि लहुम खुलूबुन याकुलूना बिया, लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हूना, ऐसे उनके दिमाग है जो समझते नहीं. तो यहाँ दिल और दिमाग दोनों के माने लेना है. और फिर ये उसके बाद में जो है वह यस्ताजिलूना काबिल अज़ाब, और ये अज़ाब की जल्दी करते हैं. वह नहीं युखलिफ़ अल्लाह वादहु, और अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, अज़ाब आके रहेगा. वह इन्ना यौमन इंदा रब्बका कल्फिन सनतिम मिम्मा तउद्दून, और अल्लाह ताला के पास एक दिन तुम्हारी गिनती के हजार बरस के बराबर है. ये जो है दूसरे मुकाम पे भी आ गया है कि अल्लाह ताला के पास एक दिन तुम्हारे हजार बरस के बराबर है. तो ये 2000 साल 2 AD चल रहा है, तो दो दिन गुजरे हैं अभी तो. अल्लाह ताला के हिसाब से तो दो दिन गुजरे. अब आप परेशान हो गए, भाई ये दो दिन कैसा है, ये समझ में नहीं आ रही, भाई ऐसे कैसी बातें कुरान में है. मैं आपको साइंस बता देता हूँ. ये जो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, 24 घंटे में एक चक्कर मारता है. मर्क्यूरी जो प्लैनेट है 88 डेज में एक चक्कर मारता है, हमारे 88 डेज में चक्कर मारता. तो आप जमीन से निकलते ही कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम चेंजेस, बॉडी ऑफ रेफरेंस, ये बहुत गहरी बात हो जाएंगी, बॉडी ऑफ रेफरेंस पे जो है टाइम डिसाइड होता. तो मर्क्यूरी पे अगर आप चले जाएं तो हमारे 88 डेज गुजर जाएंगे और एक ही दिन होगा, एक ही चक्कर लगाएगा. तो जो रेफरेंस बॉडी है अल्लाह ताला के पास, वो मुमकिन है इतनी स्लो है कि अब तक खाली दो दिन गुजरे हैं ईसा अलैहि सलाम को उठा लिए जाने के बाद, खाली दो दिन गुजरे हैं. तो जल्दी क्या मचा रहे हैं. तो अल्लाह ताला का हिसाब अलग है. कायम मिन खरियतिन अमलैतु लहा वहिया जालिमतुन, और कैसे कितने ऐसे गांव थे जिसको हमने मोहलत दी जबकि वो जो है ना इंसाफी कर रहे थे. सुम्मा अखस्तुहा, फिर हमने उनको पकड़ा. व इलैल मसीर, और हमारे तरफ ही जो है इनका डेस्टिनेशन है, मंजिल है तमाम लोगों की. कुल या अय्युन नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, आप इंसानों से कह दीजिए कि मैं सिर्फ खुले तौर पर चौकन्ना करने वाला हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं तुम्हारे अमाल का, करते या नहीं करते नहीं मालूम, मैं खुले सिर्फ इन्नमा के माने क्या आते, सिर्फ मैं सिर्फ तुमको खुले तौर पे जो है चौकन्ना कर लेने वाला हूं. और फल्लदीना आमिनु वअमिलुस्सालिहाती लहुम मग़फिरतुन वरिज़्क़ुन करीम, ये बड़ी बात खास समझने की कोशिश कीजिए. फिर वो बात आ गई कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले करे, यानी कुरान पे वैसे ही अमल करे जैसे कि ईमान लाए और अमल करे जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लहुम मग़फिरतुन, इनके लिए मग़फिरत है, दूसरों के लिए नहीं. मैं तो रट लिया हूं आयत सूरह मायदा की 9th और 10th आयत, वाद अल्लाहु लजीना आमिनु आमिलु सालिहाती लहुम मग़फिरतुन व अजरुन अज़ीम, वल्लजीना कफरु व कज़बू भी आयातिना उलाइका हुमुल उलाइका असाबुल जहीम. यानी अल्लाह ताला का वायदा है कि वो जो लोग ईमान लाए और अमल साले किए उनके लिए मग़फिरत. मग़फिरत क्या है, ये इबादात में जो गलती हो गई उसकी सजा से अल्लाह ताला इंशाल्लाह बचा ले. अब हमारी नमाजें हुई, इतनी बड़ी जमात की नमाजें हुई, किसकी नमाज कैसी थी क्या बोल सकते, मेजॉरिटी को माने नहीं मालूम, छाप पड़े नहीं मालूम, सूरह फातिहा के माने नहीं मालूम, अल्लाह अकबर के माने नहीं मालूम, मेजॉरिटी की नमाज ऐसी हो जाती. बहुत कम लोग हैं जिनको नमाज के माने मालूम, जज्बा नहीं है, किसके सामने खड़े हुए हैं, कैसा खड़े रहने का तरीका नहीं मालूम. अब ये नमाज में जो गलती हुई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, इन गलतियों को माफ कर. कुछ लोग हैं नमाज ही नहीं पढ़े, उनको भी गफूर और रहीम है, उनके लिए शदीदुल इकाब है. बात समझना है, शैतान हमको क्या समझाता, अल्लाह गफूर और रहीम. देखिए एक बात है, अल्लाह ताला के पावर्स को हम डिक्टेट नहीं कर सकते. अगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन तय करे मैं दोज़ख़ में किसी को नहीं डालता, कौन क्या बिगाड़ लेता उनका, ठीक है मियाँ करे सो गुनाह, चलो चलो पूरे लोग जन्नत में चले जाओ, कुछ भी नहीं, वो तो उनका इख्तियार है. लेकिन कुरान और हदीस क्योंकि हम समझने बैठे हैं, यहाँ से जो बात मग़फ़िरत की निकलती है वो ऐसा है कि मग़फ़िरत क्या है, गुनाहों की सजा से बचाना, गुनाहों से बचाना. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, قرآن پہ ویسے ہی ایمان لائے اور عمل کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, تو ان کو جو غلطیاں ہو گئی ہیں عبادات میں, ان غلطیوں کی سزا سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا, اور ان کے لیے رزق ان کریم ہے, بڑا آنرڈ رزق ہے جنت میں. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہرا دیں, ان کے لیے وہ تو جو ہے دوزخ کے جلنے والوں میں سے. ہرا دینے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے خلاف کام کرو, قرآن کو بٹھاؤ, کوئی صاحب سٹیٹمنٹ دے دیے قرآن سے یہ چیزاں نکال دینا چاہیے اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے, قرآن کے خلاف بول دیے, غیر مسلموں کی بات ہے. تو بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کہ ہماری آیتوں کو ڈیفیٹ کرے, اس کے خلاف کام کرے, اسلام نہ پھیلے, قرآن نہ پڑھیں لوگ, اللہ معاف کرے. ہمارے پاس بہت سے بچے آ کے بولتے, صاحب ہمارے پاس کوئی ایک عالم صاحب ہے, بولے نہیں میاں قرآن نہیں پڑھنا, ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسا ہے. سورہ بقرہ کی 185 آیت ہے, یہ ہدل الناس ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. وہ بچہ انسان نہیں ہے, بکرا دکھ رہا آپ کو, کتا دکھ رہا ہوں, انسانوں کے لیے. ایک عالم صاحب میرے سے بولے, میں جب شروع یہ قرآن اور سائنس کے کام میں لگا ہوا تھا, کسی سے ان کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بات پوچھنے گیا تھا میں, بہت سے لوگوں سے سیکھا ہوں اللہ کے فضل سے, تو ایک ٹانٹ کے طور پہ بول دیا کہ ایسا ہے صاحب, یہ ہر کس و ناقص کے جو ہے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. مولا غلطی ہو گئی صاحب, وہ سورہ بقرہ کی 185 آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو ہدی للناس بولے, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. میرے سے غلطی ہو گئی, میں سمجھا ہی نہیں, میں اپنے آپ کو انسان سمجھ کے سمجھنے کی کوشش کرا کہ کیا ہدایت ہے, دیکھیں گے بھائی اتنی صورت ہو گئی سب کے سامنے. کچھ بات آئی, اب بات چل رہی تھی تو سورہ انبیاء کی 30 آیت کی بات آئی, زمین اور آسمان ایک جگہ تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا. مطلب آپ اس کو سمجھائیے, جب یہاں بات آ رہی ہے ٹکر کی تو آپ اس کو سمجھائیے. نہیں کیا ہے, زمین اور آسمان ایک تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا. آپ مجھے ایک گھنٹہ دے سکتے ہیں آپ اوریجن آف دی یونیورس پہ, جب تو میرا تازہ سبجیکٹ تھا, یا کم از کم آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں آپ. تو قرآن سے ایسا مت روکیے لوگوں کو, دیکھیں دوسروں کی بات ہم کو کرنا نہیں ہے, اپنوں کی بات کرنا ہے. دوسرے تو روکیں گے, وہ تو چاہیں گے کہ یہ جو ہے بات نہ پھیلے, تو ہم اپنی کوشش یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو قرآن سے نہیں روکنا. یہی بات آئے گی کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری آیتوں کو ڈیفیٹ کرے. ہمارے پاس بڑے لوگ رہتے, ہاؤ میاں وہ 1400 پہلے کی بات ہے بابا, اب نہیں ہوتا آج کل, جب تک تم یہ دھندے نہیں کرے نہیں کامیاب ہوتے, بول رہے نا ہم کیسا بنا اتنے گھر, چلو ہو گئی. تو یہ کیونکہ مسلمانوں کا مجمع ہے تو یہ ہم کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسی بات نہیں کرنا جو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے.